पिंकेश कुमार के आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीतिक विज्ञान, पेपर सेकंड राजनीतिक विज्ञान राष्ट्रीय आंदोलन, अध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि तत्कालीन तथा बाद के विद्वान इस स्थापना के कारण पर अपना विचार व्यक्त करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा कि इसके नाम से भी है कि इसलिए गठित की गई थी कि संपूर्ण भारत के कल्याण के लिए कार्य करे। यह एक राष्ट्रीय संस्था थी, न कि किसी एक वर्ग मत या संप्रदाय की, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि इसमें सभी जातियों धर्मों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसी राष्ट्रीय संस्था के बारे में यह कहना ठीक नहीं होगा कि इसका उद्भव किसी एक व्यक्ति द्वारा अथवा अचानक हुआ। कांग्रेस की स्थापना के 120 वर्षों के बाद भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस इन शिक्षित करने वाले प्रभावों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई जो मैकाले तथा उसके साथियों ने भारत में बोए। इसी तथ्य को उद्घाटित करते हुए सर विलियम बेडरबर्न, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, ने कहा, कांग्रेस अंग्रेजी राजनीतिकता, राष्ट्रीयता तथा ऊंची शिक्षा तथा स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वोत्तम प्रयत्न का परिणाम है। जाने माने भारतीय राजनीति के पट्टा भी सीतारमैया ने लिखा है, यह एक रहस्य है कि किसके मन में पहले पहल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित है, जिसके विभिन्न व्यक्तियों को इसके गठन के लिए उत्तरदायी बताया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य बचाओ सिद्धांत या सरकारी सिद्धांत। यह स्पष्ट है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय उस दूरदर्शी अंग्रेजों की सूझबूझ को जाता है जो साम्राज्य को बचाने के लिए वफादार भारतीयों का एक संगठन बनाना चाहते थे। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि ह्यूम को भारत में बढ़ते हुए असंतोष तथा संभावित विद्रोह के प्रति बहुत चिंता थी। ह्यूम इस संभावित विद्रोह को रोकने के लिए अपनी चिंता से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से 1845 की गर्मियों में शिमला में अवगत कराया तथा इस संबंध में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना में सहयोग करने की प्रार्थना की। अतः एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वायसराय लॉर्ड लिटन के बदनाम युग में उत्पन्न खतरों को निपटने के लिए चतुर अंग्रेजी दिमागों ने किया, जिसमें ब्रिटिश प्रशासकों को इससे अलग रखा। दूसरा, थियोसोफिस्टवादियों का सिद्धांत। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम में श्रीमती एनी बेसेंट इस तथ्य पर बल देती है कि 1884 में अडियार में राजा रघुनाथ राव के आवास पर थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख भारतीय तथा अन्य लोग संगठित हुए थे, जिन्होंने मातृभूमि को बचाने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन के बारे में विचार किया। आगे श्रीमती बेसेंट कहती हैं कि इन सदस्यों ने अपने अपने प्रांतों में छोटे छोटे राजनीतिक दलों का गठन कर लिया तथा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर मिलने का वादा किया। इस प्रकार एनी बेसेंट इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी बताती है, परंतु इस बैठक के बारे में हमें अन्यत्र कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। संभवतः उनका उद्देश्य यह था कि थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए, जिसकी वे कई वर्षों तक प्रधान रही, राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना। तीसरा, मार्क्सवादी विचारकों का सिद्धांत। कुछ मार्क्सवादी सिद्धांत विचारकों के अनुसार, जैसे आरपी दत्त, नंदलाल चटर्जी, ग्रोवर, यह काम उन भारतीय चतुर राजनीतिकों का था जो बेसी पूंजीपती वर्ग की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन इस दृष्टिकोण को इस तर्क पर खारिज किया जा सकता है कि 19वीं सदी में भारतीय पूंजीपती वर्ग उतना विकास नहीं कर पाया था, उसकी नीतियां या उद्देश्यों को लिए एक राजनीतिक दल की जरूरत हो, तथा भारत में 20वीं शताब्दी के आगमन तक पूंजीपती वर्ग की भूमिका साफ तौर पर स्पष्ट नहीं थी। चौथा, सुरक्षा कपार सिद्धांत। डेनियल आर्गोव के अनुसार, कांग्रेस को संभावित भारतीय जनसमुदाय की क्रांति से सुरक्षा के उपाय के रूप में पैदा की गई थी। प्रारंभिक काल में यह जनता से अलग रही था, इसने प्रत्येक ऐसे विषय अलग रखा जो या तो सामूहिक एकता के ढीले ढांचे को नुकसान पहुंचाता था या आंग्ल भारतीय लोगों या सरकार की कठोर आलोचना पर बाध्य करता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सुरक्षा नलिका सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल की आलोचना करने के लिए किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मानस पुत्र था, ताकि कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। इसी तथ्य को उजागर करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण इसके संस्थापकों का साम्राज्यवाद को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि शुरू में कांग्रेस स्वाधीनता के पक्ष में नहीं थी, विरोध प्रकट करने के लिए एक नियंत्रित यंत्र के रूप में इसका सृजन प्रबुद्ध अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया था। जॉर्ज रसेल अपनी प्रसिद्ध कृति डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल चेंज इन इंडिया में लिखा है, इसका नेतृत्व उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में था जो जमींदारों व बड़े व्यापारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे और जो विदेशी प्रशासकों को झटका देने की अपेक्षा उच्च सेवाओं को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे। इस तरह वह भारत के शिक्षित वर्ग के लिए उच्च नौकरियों तथा स्वदेशी उत्पादों के अवसर सुधारने में लगे रहते थे। इससे स्पष्ट प्रमाण है कि ह्यूम भारतीय जनता के संभावित क्रांतियों से चिंतित था, जिसे रोकने के उद्देश्य उसने एक सामाजिक राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयत्न किया जिसका स्वरूप राष्ट्रवादी हो तथा जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद सुरक्षा के लिए ह्यूम तथा डफरिन के अभय कपाट बनाने की सोची, ताकि उभरते हुए असंतोष का निकास हो सके। एक संभावित मार्ग यह था कि लोगों के क्रोध तथा आवेग को अनपकारी प्रणालिका में डाल दिया जाए, इसलिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था के गठन की योजना बनाएगी। यह ठीक है कि ह्यूम को अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पांचवा, कांग्रेस रूस के भय की उपज है। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने 1950 में मॉडर्न रिव्यू के एक अंक में लेख लिखते हुए इस तथ्य पर बल दिया था कि कांग्रेस का गठन भारत पर रूस के संभावित आक्रमण के भय से किया गया था। रूस ने आक्रमणकारी रुख अख्तियार करते हुए यूरोप में जब 1884 में मुर्व तथा 1885 में पंजदेह नगर पर कब्जा कर लिया, तो इससे उत्पन्न स्थिति ने भारत में इंग्लैंड को अत्यधिक भयभीत कर दिया। इस संबंध में एक अंग्रेज अधिकारी W.S. ब्लंट ने लिखा,